हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वसदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जाय मुधीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतिदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अभी तक हस्तिनापुर में ही हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज को बहुत शोक हो रहा था अपने सब संबंधियों की मृत्यु का, इसलिए वो भीष्म पितामह, पहले उन्होंने खुद समझाया बहुत, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे, इसलिए वो उन्हें भीष्म पितामह के पास लेके गए और उन्हें बहुत बहुत वहां पर ज्ञान का प्रवचन सुनाया भीष्म पितामह के द्वारा। उसके बाद वो पुनः हस्तिनापुर में आए गांधारी और धृतराष्ट्र को सांत्वना दी। उसके बाद शौनक मुनि ने एक प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी से कि पहले श्लोक में हत्वा स्वरिक्तस्प्रिद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्म भीतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्त किमकार शिद्दत। कि जब उन समस्त आतिथायों को शत्रुओं का वध करने के बाद जब वो जानते थे वो सब आतताई हैं और उनका सब संपत्ति ले लेना चाहते हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, क्योंकि वो धर्म का पालन करने वालों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे, और उनके भाइयों ने कैसे उस राज्य को स्वीकार किया और उसके उपरांत उन्होंने किस प्रकार से वहां पर शासन किया, इस प्रकार का प्रश्न पूछा। और सुत गोस्वामी ने बताया कि ये राज्य तो उन्होंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि युधिष्ठिर प्रीतमना भूवः, कि वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की बात थी, कृष्ण इससे प्रसन्न होते थे, इसलिए उन्होंने इस राज्य को स्वीकार किया। और अब युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से शासन किया उसके विषय में बता रहे सुत गोस्वामी। जैसा कि हमने कल पढ़ा, निशम्य भीष्मोक्तम अथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विद्युत विभ्रम शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रय परिध्युपान्तम अनुजानु वर्तते। अर्थात जब उन्होंने भीष्म पितामह के वाक्यों को सुना और पुनः वही बात जब भगवान श्री कृष्ण अच्युत ने उन्हें रिपीट करके बताई तो फिर उनके अंदर विज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम, और सारे उनका जो भ्रम था, भ्रम क्या था, विज्ञान क्या है कि जगत ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, और इस विज्ञान ने विधूत विभ्रम, भ्रम जो उनका भ्रम था कि मैं ही कारण हूँ इन सब की हत्या का, वो अज्ञान चला गया। और उसके उपरांत शशास गामिंद्र इवाजिताश्रय, वो इंद्र की तरह इस पृथ्वी पर शासन करने लगे, किसके आधार पर, जिताश्रय अजित आश्रय, अजित का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण जिसको कोई नहीं जीत सकता, मतलब राजा अजित आश्रय थे और परिध्युपांतम अनुजानुवर्तते, और सारे उनके भाई जो थे वो उन्हीं राजा के आश्रित थे। मतलब कितना सुंदर शासन है, सब कुछ कृष्ण की डायरेक्शंस में हो रहा है तो क्यों नहीं सुंदर होगा। तो कैसा शासन किए और वो कितना सुंदर राज्य कर रहे थे, इसको इनके सुंदर राज्य को इस तरह से वर्णन कर रहे हैं आज के श्लोक में। देखिए कि तो मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकामस्तु कामहि शिशिश्चुष्म व्रजान् गाव पयसोदस्वतीर्मुधा कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुगामहि शिशिश्चुष्म व्रजा गावा पयसोधस्वतीर्मुधा कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुगामहि शिशिश्चुष्म व्रजान् गाव पयसोधस्वतीर्मुधा कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुगामहि शिशिश्चुष्म व्रजान् गाव पयसोधस्वतीर्मुधा कामं ववर्ष पर्जन्य। काम मतलब आवश्यक वस्तु, जितनी आपको इच्छा होती थी, ववर्ष यानी वर्षा, पर्जन्य मतलब उतनी ही, जितनी मतलब प्रजा को जितना आवश्यक होता था ना जल, जितनी जल की इच्छा होती थी, जितनी वर्षा की इच्छा होती थी, उतनी ही वर्षा होती थी। मतलब ना कभी बाढ़ पड़ती थी और ना कभी सूखा पड़ता था, ना कभी कम वर्षा होती थी और ना ही कभी अधिक वर्षा होती थी। ये कितना बड़ा सौभाग्य है उस लोगों का जो वहां पर रहते होंगे। मतलब आजकल के युगों में तो वर्षा होती नहीं है, लोग इतना तड़प रहे होते हैं, पानी कुएं सूख जाते हैं और जल लोगों को प्रोवाइड ही नहीं होता है। और क्यों, उसका कारण क्या है कि वर्षा होती नहीं है। वास्तव में जितनी आवश्यक होती है उतनी वर्षा अगर होना तो अभी जितना अन्न उपजता है उससे 10 गुना अधिक अन्न उपज सकता है। और अगर यज्ञ हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञा भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञ से अनाज उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अनाज उत्पन्न होता है। तो यज्ञ यदि सारे जीव मिलकर संकीर्तन यज्ञ करें ना तो उससे तो 100 गुना अधिक फल उपज सकते हैं, घास आ सकती है, गौ घास खाएगी, बहुत ज्यादा गौएं घास खाएंगी तो अनाज इतना ज्यादा उत्पन्न होगा, बहुत बहुत आनंद उत्पन्न हो जाएगा। ये आनंद का समाचार दे रहे हैं कि वर्षा उतनी होती थी जितनी की आवश्यक होती थी। अब वर्षा आवश्यक हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि सर्व काम दुगाम ही, सर्व काम जितनी भी इच्छा, प्रत्येक वस्तु जिसकी आवश्यकता होती थी, दुगा मतलब उत्पन्न करने वाली मही। अब क्योंकि वर्षा इतनी अच्छी होती थी, जितनी इच्छा जितनी आवश्यकता होती थी उस उतनी वर्षा हो रही थी, उस कारण से पृथ्वी सारी की सारी सुख सामग्रियां दे रही थी। हर वस्तु सर्व काम दुगामय का मतलब होता है हर वो वस्तु जिसकी आवश्यकता होती थी, किसको, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, कीड़े तक की हर आवश्यकता। मतलब मनुष्य को अनाज आवश्यक होता है तो वो उसको मिलता था, पशु को अगर घास फूस और घास पौधे पत्ते ये सब चाहिए होते थे वो भी उपजता था, पक्षियों को दाना मिलता था, कीड़े मकोड़ों को तक हर एक को पर्याप्त मात्रा में उनकी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती थी। और इतना सुंदर शासन था उनका। आजकल तो क्या होता है, मनुष्य को पीने के लिए पानी तक मिलता नहीं है सीधे, मतलब एक स्वच्छ पानी पीने के लिए भी आज का मनुष्य जो है वो उनको क्या करना पड़ता है, यूटिलिटी स्टोर से बोतल में पैक पानी लाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब पहले नदियों का पानी इतना शुद्ध होता था और इतना इजीली वहां पर हर किसी को प्राप्त होता था। आज तो यदि पानी भी लेना होता है तो पैसों पर लेना होता है, हवा भी लेनी होती है तो उसके लिए भी पैसे देने, जैसे सब लोग बोलते हैं भाई मॉर्निंग में पार्क में वॉक करने जाते तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि आज ये सब प्राकृतिक उत्पन्न जो है ना वो आना बंद हो गई है। केवल हर जगह पर देखिए फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज उसे इतना धुआं होता है, इतना पॉल्यूशन होता है, इसीलिए मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। और कितना अभी ही इतना मतलब बुरा समय आ गया, अब न जाने आगे क्या होगा। लेकिन पहले क्या होता था, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के विषय में बता रहे हैं, उनका राज्य कैसा था, कामम वर्ष पर्जन्य, जितनी इच्छा होती थी उतनी वर्षा होती थी और सर्व काम दुगामही, और पृथ्वी सब कुछ हर एक वस्तु जो है वो पर्याप्त मात्रा में दे रही थी, हर एक वस्तु जिसकी इच्छा होती थी। अब जैसे हम जो भी वस्तु है यूज करते हैं, जैसे कपड़ा है, लोहा है, लकड़ी है, फल है, अनाज है, हर वस्तु पृथ्वी से निकलती है, तो पृथ्वी इतनी संतुष्ट थी कि हर एक वस्तु को अच्छे सर्व काम दुगा मही, मही कहती पृथ्वी को, वो हर एक वस्तु दे रही थी। आजकल क्या होता है, मतलब पृथ्वी से कुछ भी हम उपज नहीं हो पा रही है क्योंकि वर्षा ही सही नहीं होती। उसका कारण क्या, राजा जो होते हैं, शासक जो है वो ही ना पवित्र राजा नहीं होते हैं, उनका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि किस तरह से हम इस मुल्क को ज्यादा से ज्यादा खाएं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि किस तरह से प्रजा को हम अच्छे से अच्छा जीवन प्रदान करें। आज तो लकड़ी नहीं मिलती है भोजन के लिए, कितने सारे लोग होते हैं जो भोजन के लिए तड़प रहे होते हैं, दूध के लिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि शिशिष्टुष्म व्रजान गाव। का मतलब होता है मतलब वो भरी रहती थी व्रजान चरागाहों, जहां पर गाय चरती है ना, या जहाँ गाय रहती है, जहाँ चरागाह व्रजान उनको बोलते हैं, जहां पर गाय घास खा रही होती। तो वो क्या थी, प्यासा पायसोदस्वती मुदा। पायसोद का मतलब होता है भरे हुए होते थे, उनके थन दूध से इतने फूल भरे हुए होते थे, और वो प्रसन्नता के कारण इतना उनको अच्छा वातावरण मिलता था, प्रसन्नता के कारण उनके धन धन में से अब बहुत सारा दूध निकाल भी देते थे जो ग्वाले होते थे वो, और बछड़े जो थे वो भी दूध पीते थे। फिर भी हर वक्त उनकी गायों के जो थन थे वो दूध से भरे हुए होते थे। मतलब यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जीव कितने सुखी थे, कि समस्त जीव किस तरह से सुखी थे, उनके सुख का दर्शन बता रहे हैं, और किस तरह से बता रहे हैं, दूसरे एक एक प्राणी का बोल के नहीं बता रहे, सिर्फ गौओं का नाम ले रहे हैं। या वास्तव में भक्तों, जहाँ गौवें सुख से रहती है ना, और गौवें जहाँ पर आनंदित होती हैं, वहां पर सारे जीव आनंदित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गौओं का स्पेशल नाम दिया गया है, शिशिष्टुष्मा व्रजान गावः। यानी कि गौओं के सुख से, अब जहां पर वो रहती थी वहां इतना दूध बहता था कि जो वहां की घास थी ना वो हमेशा गीली रहती थी। और किसी भी राज्य में सुंदर शासन और सुख का प्रमाण है वहां की सुखी गौएं। अगर गौएं सुखी हैं तो समझो वो राज्य सुखी है। और आजकल के युग में सबसे भारी विपत्ति ये है कि गौएं सुखी नहीं है, गौओं की हत्या हो रही है, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य आज के जीवों का कि जो चाहते भी हैं गौ को हत्या से बचाना, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वो देख रहे हैं कि गौओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर गौवें सुखी नहीं है तो समझो कि मानव जाति सुखी नहीं है। अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था उतना ही पानी बादल बरसाते थे, और मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी देवी करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गावें अपने दूध से चरागाहों को सिक्त करती रहती थीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अगर पृथ्वी और गायें पर्याप्त मात्रा में हो तो समझो आर्थिक विकास है, अगर नहीं है तो समझो कि बहुत ही अभी बहुत निष्कृष युग आ गया है। अन्न फल दूध खनिज वस्त्र ईंधन आदि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। ये सब जीव को, मनुष्य को ये सब की आवश्यकता होती है, अनाज फल दूध ये वस्त्र ईंधन ये सब की आवश्यकताएं होती हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को मांस तथा मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए, दूध चाहिए, सब्जियां चाहिए, ईंधन चाहिए, और ये सब वस्तुएं चाहिए ना, मांस और मछली या लोहा ये सब नहीं चाहिए। जो आजकल फैक्ट्रियों में वस्तुएं बनती है ना वो जीने के लिए आवश्यक नहीं है। जीने के लिए आवश्यक है वर्षा, जीने के लिए आवश्यक है वायु, जीने के लिए आवश्यक है अनाज फल सब्जियां दूध। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के वश में नहीं होती है, स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का दास है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। अब यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएं, बहुत ज्यादा उन्नति हो देश की, लेकिन उन्नति हो नहीं सकती है जब तक कि वहाँ का जो राजा होता है वो भगवान के आदेशों का पालन ना करे। और क्योंकि वर्षा जो है वो किसी मनुष्य के उस इख्तियार में नहीं होती है, उसका अधिष्ठाता कौन है, इंद्रदेव। और इंद्रदेव कब प्रसन्न होते हैं, जब राजा जो है वो भगवान के आदेशों का पालन करता है। तो क्योंकि इंद्रदेव भगवान के दास हैं, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनके दास होने के कारण इंद्रदेव का ये कर्तव्य हो जाता है कि मानव जाति को प्रसन्न करें। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि महाराजा युधिष्ठिर जो है वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग कार्य करते थे। साफ साफ लिखा कि युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूवः, वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते थे। और वो किस तरह से कार्य करते थे कि शैशासह गामिंद्र इवाजिताश्रय, जैसा भगवान की आज्ञा होती थी, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की डायरेक्शंस के अनुसार वो कार्य करते थे और उसकी बदली में वो सब कुछ प्राप्त होता था जो कि एक सुखी राज्य को आवश्यक होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती उत्पन्न होते हैं। अन्नों तथा शाकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण होता है और मोटी गाय प्रचुर दूध देती है, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब वर्षा उपयुक्त नक्षत्रों के साथ वर्षा की बूंदें मिलती हैं, तो जैसे सीपों में बूंदें जाती हैं तो मोती बनते हैं और बहुमूल्य रत्न उत्पन्न होते हैं। और बारिश से क्या होता है, मनुष्यों के लिए शाक और पशुओं के भरण के लिए हर एक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और गायें जो होती हैं उनको भी प्रचुर मात्रा में जब घास मिलता है और फिर वो बहुत ज्यादा दूध देती हैं तो सारे जीवों को बल मिलता है, जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, विश्वालयों, कसाई घरों की आवश्यकता क्यों पड़े। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब आज का मनुष्य इतना बिगड़ गया है, उसका कारण क्या है, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही। वर्षा का ना होने का कारण क्या है, क्योंकि प्रजा जो है, राजा जो है, वो भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे बल्कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर। तो जब तक ये पूरा मनुष्य, श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि पूरा ये समाज जो है वो दुख भोग रहा है, उसका कारण एक ही है, क्योंकि जीव कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार नहीं कर रहे। यदि सब जीव भक्ति करना शुरू हो जाएं, कृष्ण के आदेशों का पालन करना शुरू हो जाएं, तो संसार में कहीं दुख न दिखे। अगर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों की कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता, क्या इस सभ्यता में एक दूसरे से तथा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है, क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में बेचकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कुछ भी आधुनिक संसार में हो रहा है, भले हम सोचते हैं कि आधुनिक संसार में इतना ज्यादा प्रगति हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये केवल नारकीय जीवन ही मिल रहा है हम सबको। ये सभ्यता जो सिनेमा, ये वेश्यालय घर और ये सब भौतिक वस्तुएं, मांस, होटलें इत्यादि, इससे जीवन, मनुष्यों का जीवन और भी बिगड़ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कहा गया है कि गौवे अपने दुग्ध से चरागाहों से सिक्त रहती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे परम प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षा की आवश्यकता नहीं है? तो लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करें? मनुष्य अन्न फल दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता? क्यों उनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? और तो फिर इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों खुले हैं? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराजा परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध कर रहा है। तो राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे दंडित किया। क्या राजा या कार्यदक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? तो फिर सुचालित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये सामान्यता ये समानता बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? अतएव सरकार के आधुनिक प्रगतिशील संस्कृत स्वरूप के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का सार राज्य तंत्र तथा तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशुओं से भी गिरे हुए मनुष्य को पशु से भी गिरे हुए दूसरे मनुष्य के लिए मतदान करने दिया जाता है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज का मनुष्य तो पशुओं से भी गिरा हुआ है और वो वोट देकर एक ऐसे पशु तुल्य राजा को स्वीकार करते हैं जो अपनी ही प्रजा को अपनी आंखों से देखते हैं मरता हुआ, उनको कसाई घरों में कटता हुआ देखते हैं और उसकी अनुमति देते हैं। तो आज का मनुष्य तो पशुओं से भी गिरा हुआ है और वो ये उनका जो राज्य था महाराजा युधिष्ठिर का राज्य इस प्रकार का राज्य नहीं था, वो बहुत ही सुंदर और सुनिश्चित राज्य था। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हम सभी प्रकृति के प्राणी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं वीर्यदाता पिता है और प्रकृति सभी प्रकार के जीवों का की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों के लिए पर्याप्त भोजन है। श्री प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितामहस्य जगतो, मैं समस्त जीवों का पिता हूँ, और भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं प्रकृति को बीज देता हूँ जिससे जीवों का उत्पन्न संभव है। तो एक साधारण माता पिता भी अपने संतान को पाल सकते हैं और पर्याप्त उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, तो क्या भगवान पिता भगवान और माता प्रकृति पृथ्वी जो है वो अपने संतान को भोजन इत्यादि नहीं दे सकते? वो सब तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों के लिए पर्याप्त भोजन है। तो मनुष्य अन्य समस्त जीवों का अग्रज है। अग्रज है मना मनुष्यों को कहा जाता है कि ये सबसे उत्तम योनि है, तो उनमें पशुओं की उपेक्षा अधिक बुद्धि है जिससे वे प्रकृति के मार्ग का अनुसरण कर सके और परम पिता के इंगितों को समझ सके कि भगवान क्या, क्योंकि उनके पास बुद्धि है तो भगवान की इच्छा को भगवान शास्त्र में जो लिखा हुआ है उस बात को समझ सकते हैं। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा दावा डोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब ये श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य होता अधारी सारे जितने भी जीव हैं वो भगवान के संतान हैं, भगवान ने बीज दिया है। तो क्योंकि मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उनमें क्योंकि जानवरों से ज्यादा बुद्धि है, तो वो भगवान के इशारों को समझ सकते हैं, भगवान शास्त्रों में भगवान क्या आदेश देते हैं उसको समझ सकते हैं। तो शास्त्र में भगवान कहते हैं भौतिक इंद्र तृप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है इस दुनिया में भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए और अपनी भौतिक इच्छाओं को और भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए और इंद्रियों को खुश करने के लिए लालच करता है और ये सारी भौतिक जो तरक्की है भौतिक विकास के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। यहाँ पर शिला प्रभुपाल जी बता रहे हैं कि मनुष्य को इन कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और बल्कि क्या करना चाहिए अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। मनुष्य जो है वो प्रकृति मनुष्य के लिए हर एक वस्तु प्रदान कर सकती है। यदि जीव जो है वो ऑनेस्ट हो जाए अपने से अपने भगवान से तो फिर ना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एकदम भगवान श्री कृष्ण के आदेशों अनुसार इस राज्य को चलाते थे तो हर एक जीव सुखी था क्योंकि वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो रही थी, प्रकृति समस्त वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में दे रही थी, गौवें दूध दे रही थी, सब इतने ज्यादा संतुष्ट थे। लेकिन अभी भले कितनी कोशिश कर रहे हैं सब लोग लेकिन क्योंकि यहाँ श्री प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में कहते हैं यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है, ये आज का मनुष्य तो कुत्तों और सुअरों की तरह जी रहा है, केवल इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य बना के रखा है। वास्तव में ये मनुष्य जो है वो इस तरह से जीने के लिए नहीं है। धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मा विहीनो पशु भेर समाना, यदि धर्म है तो ही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है, यदि धर्म नहीं है तो पशु भेर समाना, फिर तो वो पशुओं की तरह ही जी रहा है। और धर्म क्या है, धर्म है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है उस आज्ञा का पालन करना धर्म है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है वो करना धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर इस कलयुग के प्राणियों को उसी धर्म को और भी सरल करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके बताया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम अव केवलम कलई वनास्तव गतिरन्यथा। कलयुग के लोगों के लिए एक ही धर्म है, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए और विश्वास रखिए कि ये धर्म करने से जीव अपने जीवन में जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको प्राप्त करेगा और जो जो उनके पास होगा उसकी सुरक्षा करेंगे। ये सब भगवान की गारंटी है। हमें क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, इसके अतिरिक्त सुखी होने की और कोई तरीका नहीं है और कोई विधि नहीं है सुखी होने की कि हम भगवान को सुखी करें। केवल भगवान को संतुष्ट करने से ही जीव संतुष्ट हो सकता है, इसलिए हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।